हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारु अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23। शक्नोति है वयः सोडुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को उन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। थोड़ा तो हम इसमें वेगों के बारे में समझाना चाहेंगे। बोलने का वेग वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। बड़ा अद्भुत है, उपदेव शामित के श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी वाणी को वेग, वाणी का जो वेग है, बोलने की जो इच्छा है, बोलने का जो एक टेंडेंसी है हमारे हमारे व्यक्तित्व में, उसको क्रोध और मन के वेग के आगे रख रहे हैं। यानी अगर हमने बोलने पे नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही क्रोध और मन पे नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि क्रोध और मन को तेल मिलता है, ईंधन मिलता है वाणी के द्वारा। जो जब किसी को क्रोध आता है और उस समय वो शांत रह जाए तो क्रोध का वेग चला जाता है। ऐसे ही मन में बहुत कुछ चल रहा हो लेकिन अगर वाणी से भगवान का नाम लेते रहे तो फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है। इसको हम लोग अनुभव भी करते हैं, जब हम लोग जप करते हैं तो 5-6-7 महला के बाद मन थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम को सुनना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो व्यक्ति इधर उधर कुछ भी खाता रहता है जिह्वा वेग, तो उसके लिए उपस्थ यानी जननेन्द्रियों को और पेट को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्विच है, हमारी जीव जो है ये स्विच है। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी जीव को नियंत्रित कर लेता है वो अपने सभी इंद्रियों को नियमित कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने जीव को नियंत्रित नहीं करता वो किसी भी इंद्रिय को संयमित नहीं कर पाता है। इसीलिए देखिए हम लोग भी, हम लोग का मतलब आचार्य लोग पहले सबसे पहले किसी को यही बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और प्रसाद खाओ। जब इस प्रकार से जीव नियंत्रित हो जाती है तब व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। अन्यथा इंद्रियां अगर बहिर्मुख रहेंगी, इंद्रियों का वेग बाहर की ओर जाता रहेगा तो व्यक्ति के लिए भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। एक और बात यहाँ पे है कि गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बताते हैं। संयमित जीवन बताने का अर्थ है कि उनका जीवन भगवान की सेवा की ओर गियर्ड होता है। गियर्ड का मतलब लगातार भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विधो जना। भगवान को जानने के लिए व्यक्ति को अनडिवाइडेड भक्ति यानी कि 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ समय अपने सेवा में लगे और कुछ समय भगवान की सेवा में लगाए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को सो नहीं सकता है या खा नहीं सकता है, लेकिन इन सब का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपने शरीर का भरण पोषण इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। और ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। शुरुआत में बातें बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जाते हैं तो भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है वो प्रबल होती चली जाती है और व्यक्ति की इच्छा होती है कि 24 घंटे भगवान की सेवा करें। ये भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से कोई भौतिक इच्छा रह ही नहीं जाती, और अगर भौतिक इच्छा रह जाती है तो व्यक्ति जरूर क्रोध का शिकार हो जाएगा। और उसके बारे में हमने भी पहले भी चर्चा किया था किस प्रकार से भौतिक इच्छाएं हमें शुरुआत में भी कष्ट देती हैं और पूर्ण करने का प्रयास भी कष्टकारी होता है, और जो सुख मिलता है सो कॉल्ड बहुत थोड़ा सा होता है, तो उस सुख के बाद अभी हम असंतुष्ट रह जाते हैं। तो व्यक्ति क्रोध से प्रभावित हो जाता है, और क्रोध अगर व्यक्ति के चित्त में आता चला गया भौतिक इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न क्रोध, तो फिर व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और वो आत्म साक्षात्कार के पद से च्युत हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, शक्नोति यदि तुमसे संभव हो, क्या संभव हो, सोढ़ुम, सोढ़ुम का अर्थ है सहन करना। यदि भगवान कृष्ण कह रहे हैं यदि तुम्हारे लिए सहन करना संभव हो, इस काम और क्रोध से उद्भूत वेग को कब तक सहन करना है, प्राग शरीर विमोक्षणात्, शरीर को छोड़ने से पहले यानी मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के समय तक ये वेग हमको हम सताएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वेग एकदम खत्म हो जाएंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि जब व्यक्ति के हृदय में भोग की इच्छा होती है और वो भोग की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसे एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इस प्रकार का ग्लानी होती है। तो ये ग्लानी व्यक्ति को सहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और वो खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो स्वभाव नेचुरल है कि हमें कुछ क्रोध आएगा, लेकिन उसको सहना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि ये भगवान का ही व्यवस्था है जिसके कारण मुझे ये आज मेरी प्लेट में आज प्रसाद या कुछ खाना आया है, ये भगवान की ही व्यवस्था है। तो क्रोध करने के बजाय शांति से उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सहन कर लेगा तो होगा क्या, सयुक्तः, ऐसा व्यक्ति योग में सही प्रकार से स्थित है। भगवान यहां बोल रहे हैं सयुक्तः सुखी नर, युक्त शब्द है ये योग का ही एक पर्यायवाची है, और वो व्यक्ति युक्त है भगवान बोल रहे हैं, और न सिर्फ वो युक्त है अपितु वो सुखी भी है। तो भगवान इस श्लोक में जो पिछले श्लोकों में बात चली आ रही है उसी को समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शारीरिक सुखों में ही अपना, ये कह सकते शारीरिक सुखों में बिल्कुल भी अपना सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत होता है, और वो अशाश्वत होते हैं, और वो अंततो गत्वा हमको फ्रस्ट्रेट ही छोड़ेंगे असंतुष्ट ही छोड़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग इस प्रकार के भोगों में अपने चित्त को नहीं लगाते हैं। तो अब व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय सुख जो है वो अशाश्वत है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये जानने मात्र से इंद्रिय सुख की इच्छाएं चली तो नहीं जाती, वो तो हमारे हृदय में रहेंगी, तो हम उसका करेंगे क्या, वो तो रहती ही है। ये चीज ये समझ लेना कि कोई चीज मेरे लिए अवांछनीय है उस वस्तु को मेरे लिए अवांछनीय बना तो नहीं देता, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वस्तु खराब है या जानते हैं ये चीज खराब है, जीवन में हम देखते भी हैं चीज खराब है, फिर भी उस महसूस तो हृदय में से तो नहीं लगता है कि वो व्यक्ति वो वस्तु मेरे लिए खराब है, मुझे नहीं इसको उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है वो जानते हैं कि मीठा खराब होता है, लेकिन वो मीठा छोड़ तो नहीं पाते, कुछ समय तक तो कंट्रोल करते हैं लेकिन फिर भी मीठा खाने की इच्छा तो रहती है। तो बुद्धि के स्तर पे हम जरूर सोचते हैं कि वस्तु खराब है, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारी इच्छा रहती है कि हम उसको भोगें। सो अगर इच्छाएं रहें उसको उन वस्तुओं को भोगने की, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं शक्नोत इहैव यह सोडुम। अब यानी कि अगर संभव हो तो तुम्हें इसको सहन करना चाहिए, यानी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना चाहिए कि भावनाएं सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सहन करने के लिए, इसका अर्थ क्या है? जनरली कहा जाएगा, अगर ये मान लीजिए कहा जाए कि अगर आपके लिए संभव हो, तो उसका अर्थ ये है कि अगर संभव नहीं है तो आप मत करिए। लेकिन इस भाव में भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां पर नहीं कह रहे हैं। जब सामान्यतः जब एक क्षत्रिय को बोला जाता है कि यदि आपके लिए संभव हो, तो उनके इस वचन के द्वारा इसके हृदय में क्षत्रिय के हृदय में एक कह सकते हैं चैलेंज की भावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, मैं करूंगा, मेरे लिए क्या संभव नहीं है, मैं इसको जरूर करूंगा। तो क्षत्रिय जान सामान्यतः उनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, या उनसे एक्सपेक्ट समझते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एग्रेसिव होंगे, वो युद्ध कर कौशल में बड़े आगे होंगे, वो जो भी आपका कोई जो सामने क्या कहते हैं शत्रु होगा उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको हराएंगे। लेकिन युद्ध कौशल का एक और बहुत बड़ा अंग है और उसे कहते हैं सहनशीलता। कभी कभी क्षत्रियों को एक अलग प्रकार का युद्ध लड़ना पड़ता है जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर सकते, अपितु दोनों के बीच में सहनशीलता का युद्ध होता है। और जो व्यक्ति अधिक सहिष्णु होता है वो अंततो गत्वा जीत पाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सहन करना सीखो। किसके क्या किस कौन सा युद्ध करना है? काम को जीतने का, यह भोग की वासना है, इसको जीतने के लिए तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इस भोग की वासना को तुरंत तुम अपने हृदय से नहीं निकाल सकते, यानी हम सब लोग की बात हो रही है, लेकिन हमको सहन करना सीखना पड़ेगा। अगर हम काम को बोल भी दें कि तुम चले जाओ या चले जाओ, तो काम जाने वाला नहीं है और हृदय में रहता है और फिर वापस वापस बार बार आता है। इसका अनुभव सभी साधकों को होता है। तो जो काम से हमारा युद्ध है, काम क्रोध इत्यादि जो भी हैं, जब हमें भगवान बता रहे हैं, तो उसमें सहनशीलता का युद्ध है। हम काम को तुरंत भगा नहीं सकते, हमें से धीरे धीरे घिस घिस के धीरे धीरे करके खत्म करना होगा। अब ये धीरे धीरे घिसने का मतलब क्या है? बार बार जब इंद्रिय भोग की इच्छाएं आएंगी तो उन पे हम अगर कार्य नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये काम कम होने लगता है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। और ये इस समय इतना बड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि कई जन्मों में हमने भगवान के विपरीत होकर के भोग किया है, इसीलिए काम बड़ा स्ट्रांग हो गया। जैसे कोई बहुत खतरनाक कुत्ता है हमारे और हमारे घर पे, एक खराब कुत्ता है और एक अच्छा कुत्ता है, तो कई कई समय तक आप खराब कुत्ते को खिलाए हैं और उसके बाद उसे खिलाना बंद कर देंगे तो स्वभाव की बात है कि वो थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा। लेकिन अगर उसके चीखने चिल्लाने पर हम ध्यान ना दें और अपने अच्छे कुत्ते को खिलाते रहें, तो एक दिन अच्छा कुत्ता बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और जो खराब कुत्ता है वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो उसी प्रकार से अगर काम इच्छाओं पर व्यक्ति नियंत्रण प्राप्त कर ले और उनको उनके अनुसार कार्य ना करे, भले ही हृदय में इच्छाएं हों लेकिन उसके अनुसार कार्य ना करे, तो इन इच्छाओं को उसने तेल देना बंद कर दिया है तो धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे एक दीपक है, दीपक जल रहा होता है तो दीपक तुरंत नहीं बंद होता है, लेकिन अगर हम तेल देना बंद कर दें तो धीरे धीरे दीपक भी शांत हो जाएगा, उसकी लौ बुझ जाएगी। तो इस समय प्राय हम सभी लोगों के हृदय में काम हमको बहुत बहुत परेशान करता है और कभी कभी तो हम पर हावी भी हो जाता है। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है भगवान के द्वारा कि हमें इसको सहन करना चाहिए। तो अब व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि हमें कब तक सहन करना पड़ेगा? तो ये बात यही इस श्लोक में यही बताई गई है, सहनशीलता की जो हम बात कर रहे थे काफी लंबे समय तक, इस सहनशीलता के युद्ध में व्यक्ति का जो धैर्य है वो शत्रु के धैर्य से अधिक होना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा। और इसलिए यहां लिखा गया है प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर है तब तक, जब तक हमारा हम शरीर त्यागते नहीं है तब तक हमको इस काम रूपी शत्रु से युद्ध करना पड़ेगा, और वो युद्ध है सहनशीलता का। इस संबंध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने नाली, वो एक खाई या नाली, नाली एक प्रकार की होती थी, वो खोद लिया करते थे और दोनों ही एक दूसरे पे स्पष्ट रूप से युद्ध नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें से जो सैनिक था वो सोचता था कि अरे मैं बहुत देर नाली में के अंदर रह गया, खाई में रह गया, कितनी देर मैं यहाँ रहूंगा, तो जैसे बाहर निकलता था तो तुरंत उसको दूसरा व्यक्ति खाई में बैठे बैठे ही गोली मार करके मारने का प्रयास करता था और व्यक्ति मर भी जाता था। उसी प्रकार से व्यक्ति अगर सोचता रहे कि अरे मैंने बहुत सा इंद्रिय संयम कर लिया, अब तो मुझे और इंद्रिय संयम करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं जैसे चाहे वैसे बर्ताव करूंगा, अब मुझे साधना करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फिर से काम के प्रभाव में आने का खतरे में पड़ जाएगा, निश्चित रूप से उसको इस प्रकार का खतरा झेलना पड़ेगा। तो ये सहनशीलता का युद्ध है, व्यक्ति मृत्यु पर्यंत अपनी साधना में भक्ति में लगा रहे ये समझते हुए कि काम कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम को नहीं कंट्रोल करता है तो क्या होगा, काम एक भयानक रूप लेकर के क्रोध के रूप में परिणित हो जाता है। जब भौतिक इच्छा संतुष्ट नहीं होती है, पहले भी चर्चा की गई थी, तो फिर वो क्रोध के रूप में परिणित हो जाती है और हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो इसलिए व्यक्ति काम को अगर उसको सहन कर लेगा तो क्रोध के रूप में वो परिणित होने से बच जाएगा। थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में क्या होता है। तो ऐसा व्यक्ति युक्त होता है, और वो व्यक्ति कैसा होता है, भगवान ने 5.21 में समझाया था, सब ब्रह्म क्या इसमें बताया, अक्षयम सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसा ही व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करेगा। और तप का अर्थ भी यही होता है, हमने पहले भी चर्चा किया था कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको ना करके बल्कि जो अच्छा हमारे लिए होता है उसको उसमें अपने आप को लगाना, तो इसके द्वारा हमारा हृदय की शुद्धि होती है और फिर हम लोग अनंत सुख प्राप्त करने के योग्य बन पाते हैं। तो अब प्राय सभी लोग इस सहनशीलता को सुख का मानदंड नहीं मानेंगे। यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो सहन कर लेगा वो युक्त है और वो सुखी नर है, लेकिन प्राय नहीं मानेंगे। जैसे कोई हम पर अगर अटैक कर रहा है, हमको मारना चाहता है, तो क्या सहनशीलता कोई सुख का कारण है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या जैसे मान लीजिए हृदय में इच्छाएं आ रही हैं भोग करने की, हम केवल सहन करते रहे, नहीं नहीं बस हमें नहीं करना है भोग, हमें नहीं करना है भोग, तो कैसे हम सुखी हो जाएंगे? ये हमको सुखी कैसे कर देगा, ये विचार करना चाहिए। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि सहनशीलता मुझे तुरंत सुख नहीं दे सकती है, हाँ लेकिन मुझे दुख से जरूर बचा सकती है। अगर इंद्रिय जो भोग हैं उनकी इच्छाएं हैं, अगर मैं इंद्रिय भोग में लग जाता हूं तो ये मेरे लिए आगे जाकर दुख का कारण बनेगी। तो अगर इंद्रिय भोग की इच्छाओं को व्यक्ति सहन कर लेता है तो आगे आने वाला दुख से वो व्यक्ति बच जाएगा, ये बात तो सत्य है। जैसे किसी के शरीर पे कुछ खुजली हो रही हो, तो खुजली अगर वो नहीं खुजलाए तो उसकी खुजली कुछ हद तक शांत होगी, पहली बात, और अगर वो खुजलाने लगा तो थोड़ा सुख मिल सकता है शुरुआत में, लेकिन बाद में खून आने लगेगा और वो घाव बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं खुजलाता है तो फिर वो धीरे धीरे वो खुजलाहट कम हो जाती है, और साथ साथ उसको दवाई लगाएगा तो वो बीमारी पूरी तरह से चली जाएगी। और देखिए स्पष्ट रूप से जब ये बात बोल रहे हैं तो ये स्त्री पुरुष के संग की इच्छाओं के बारे में होता है, खाने पीने के बारे में इतना अधिक नहीं है जितना कि ये स्त्री पुरुष के संग के बारे में। इसीलिए
बोला जाता है शास्त्रों में कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ जीवन व्यक्ति को काम का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा उससे विरत रहना चाहिए ताकि वो मनुष्य जीवन को अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगा सके। जितना अधिक व्यक्ति इस मैथुन सुख में घुसता है उतना अधिक ही उसकी चेतना की वो शरीर है वो बढ़ जाती है, और अन्यथा भी बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोना, ये सब चीजें जो हैं, या बहुत अधिक मैथुन करना, इस प्रकार से व्यक्ति जो करता है तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो भगवान के बारे में भगवान की भक्ति कर पाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में सुप्तावस्था या जागृत अवस्था में रहती हैं, लेकिन मृत्यु पर्यंत अगर हम उसको सहन करते रहे तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जितनी मात्रा में काम हमारे हृदय से कम होता चला जाएगा उतनी मात्रा में हम सुखी रहेंगे। जैसे भगवान आगे बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है वो अब इन भौतिक इच्छाओं से उबलगुल ऊपर उठ गया, और इस चीज को भगवान इस चीज को हम श्रीमद् भागवत में भी सुनते हैं, तदार्जस्तमो भावा काम लोभ दयाश्चे चेतरेत्र नाविदम सतम सत्वे प्रसिद्धति। जब चित्त से काम क्रोध लोभ का ये भावना कम हो जाती है जो कि रजोगुण तमोगुण के कारण है, और व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति रियली भक्ति के सुख का आनंद अनुभव करता है। तो ये भगवान गीता में भी बोल रहे हैं और भागवत में भी इस बात की पुष्टि होती है। तो यदि हम इस जीवन में इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को सीमित कर पाते हैं तो फिर इस जगत में, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तभी सुख प्राप्त होगा, अपितु तो इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना अंतर्मुखी हो गई है और हृदय के अंतर में भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण सभी सुखों के आगार हैं। लेकिन अगर उनसे विमुख होते रहेंगे या विमुख होने के कार्य करते रहेंगे तो केवल दुख प्राप्त करेंगे। इसे पिछले वाले श्लोक में बताया गया था, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। कि जो भगवान, जो योगी जन है वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में आनंद लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सहन करते जाना है और हमारे पास कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम भक्तों के लिए भगवान का नाम है, उनकी लीला है, उनकी कथा है, उनकी वाणी है, सब कुछ पे हम संपर्क में रहते हैं, उनकी सेवा है, तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी आसानी से काम को जीत सकते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, काम मतलब इच्छा। तो अगर अपनी इच्छाओं को हम कृष्ण की सेवा की तरफ मोड़ देते हैं तो केवल सहन ही नहीं करना पड़ता है बल्कि ये वेग जो है वो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो जीवन हमारे लिए सुखी हो जाएगा। हरे कृष्णा।